ज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मा मनभीप्सुमन्धं कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंध के तीसरे अध्याय का 28 नंबर का श्लोक, स्कंध 6 अध्याय 3 श्लोक 28। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तानानयध्वमसत विमुखान् मुकुन्द पादारविन्दमकरन्दरसादजस्रम् निष्किञ्चन हि परमहंसकुलैरसङ्गहि ज्योष्ठाद्गृहे निरयवर्त्मनि बद्धतृष्णा तान् उनको आनयध्वम मेरे सामने लाओ। असतः अभक्त जिन्होंने कृष्ण भावनामृत नहीं स्वीकार किया, विमुखान जो विमुख हैं, मुकुंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद के पाद अरविंद चरण कमलों के मकरंद मधु से रसात स्वाद से अजस्रम निरंतर निष्किंचनय भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त पुरुषों द्वारा परमहंस कुलय परम सम्मानित व्यक्ति परमहंसों द्वारा असंग ही भौतिक आसक्ति से रहित जिष्टा जो भोगा जाता है भोग्य गृह गृहस्थ जीवन में निरय वर्तमनी नरक ले जाने का रास्ता बद्ध तृष्णा जिनकी इच्छाएं बद्ध हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, परमहंस सम्माननीय पुरुष होते हैं जिन्हें भौतिक रूप में कोई रुचि नहीं है, तथा जो भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते हैं। मेरे सेवकों, मेरे पास ऐसे व्यक्तियों को ही दंडित किए जाने के लिए लाओ जो उस मधु के आस्वादन से विमुख हैं, जो परमहंसों के संगति नहीं करते, तथा जो गृहस्थ जीवन एवं संसारिक भोग में लिप्त हैं, क्योंकि ये नरक ले जाने वाले रास्ते हैं। तात्पर्य, जमदूतों को यह चेतावनी देने के बाद कि वे भक्तों के पास नहीं जाएं, अब यमराज यह बताते हैं कि किन लोगों को उनके समक्ष लाया जाए। वे जमदूतों को विशेष रूप से सलाह देते हैं कि वे ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को लाए जो मात्र संभोग के लिए गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं। जैसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यन मैथुनादिगृह मेध सुखम हितुच्छम, लोग केवल संभोग के लिए गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं। वे अपने भौतिक कार्यकलापों द्वारा अनेक प्रकार से सदैव सताए जाते हैं और उनका एकमात्र सुख सारे दिन कठिन श्रम करके रात में वे अपने भौतिक कार्यकलापों द्वारा अनेक प्रकार से सदैव सताए जाते हैं और उनका एकमात्र सुख सारे दिन कठिन श्रम करने रात में सोने तथा संभोग करने में निहित रहता है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवयायेन चवावयः, भौतिकतावादी गृहस्थ रात में या तो सोते हैं या संभोग में रत रहते हैं। दिवा चाहिर्थया राजन कुटुंब भरणे नवा, दिन के समय धन की खोज में रहते हैं और यदि धन मिल गया तो उसे अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च करते हैं। यमराज अपने सेवकों को विशेष रूप से मंत्रणा देते हैं कि वे उन भक्तों को नहीं लाएं जो सदैव भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते रहते हैं, जो समदर्शी हैं और सारे जीवों पर सहानुभूति के कारण कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भक्तगण जमराज द्वारा दंडनीय नहीं हैं, किंतु जिन लोगों को कृष्ण भावनामृत की कोई जानकारी नहीं रहती उन्हें उनके तथाकथित पारिवारिक भोग के भौतिक जीवन से नहीं बचाया जा सकता। श्रीमद् भागवत 2.1.4 में कहा गया है, देहापत्य कलत्रादि स्वात्मशयनेश्व सत्सपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। आत्मतृप्ति के लिए ऐसे लोग विश्वास करते हैं कि उनके राष्ट्र समुदाय या परिवार उन्हें बचा लेंगे। वे इस बात से अचेत रहते हैं कि ऐसी गलती करने वाले सैनिकों को कालक्रम में विनष्ट कर दिया जाएगा। निष्कर्षतः मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों की संगति करें जो 2400 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। एक बार फिर से श्लोक को बोलिए सब लोग साथ में सब लोग बोलेंगे। ताना नयध्वमसत विमुखान मुकुंद पादारविंद मकरंद रसाद जस्रम निष्किंचन परमहंस कुलैरसंगै ज्योष्टागृहे निरयवर्त्मनि वा। एक एक श्लोक हम लोग बढ़ रहे हैं, पीछे जाने का एकदम समय नहीं है। कल आप लोग सुने यमराज जी अपने दूतों को निर्देश दे रहे, एक बार गलती हो गई लेकिन अब से तुम लोग सचेत रहो। और वे कह रहे हैं तुम लोगों को पापियों को लाना है, जो भगवान के भक्त हैं तो तानो पसीदत, उनके तो नज़दीक भी मत जाओ। लाने की बात तो दूर है, उनके नज़दीक मत जाओ। फिर नज़दीक मत जाओ क्यों? कह रहे हैं कि बहुत भारी खतरा है, हरेर गदया भी गुप्ता। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अपने गदा से करते हैं, उपलक्षण है चक्र से करते हैं। और उन भक्तों को ब्रह्मा या मैं या स्वयं काल भी दंडित नहीं कर सकता। और तुम लोग एक बार उनके नज़दीक गए लेकिन वे लोग कुछ किए नहीं, छोड़ दिए। लेकिन एक बार तो गलती माफ हो गई, कदाचित अब तुम लोग किसी भक्त के नज़दीक चला गया है तो वो जो रक्षक हैं भगवान के दूत वे प्रहार कर सकते हैं, तुम्हारे जान पर खतरा आ सकती है, उनके पास भूल करके मत जाओ। ऐसा जब निर्देश दे रहे हैं तो स्वाभाविक ही यमराज जी के दूत प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर कुछ हम लोगों का रोजगार है, कुछ काम है, कहाँ जाएं? वहाँ तो नहीं जाना है, ठीक है हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन हम लोगों को किसको लाना है, किसके पास जाना है? तो आज के श्लोक में यमराज जी प्रिंसिपल दे रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि तान आनयध्वम, उन व्यक्तियों को लाओ। वे किसको? कि असत जो अभक्त हैं। अभक्त कि क्या आशय है? तो कह रहे हैं कि मुकुंद पादारविंद मकरात विमुखा, जो भगवान के चरण कमल से विमुख हैं और अवसर पा करके भगवान के चरण कमल की विशेषता दे रहे हैं कि निष्किंचन ही परमहंस कुलैर संगे जुष्टात्। भगवान के चरण कमल की विशेषता दे रहे हैं कि जो निष्किंचन है, परमहंस हैं, अनासक्त हैं, तो ऐसे भक्त भगवान के चरण कमल का निरंतर सेवन करते हैं। और ऐसे चरण कमल से जो विमुख हैं और परिणाम स्वरूप गृहे बद्ध तृष्णा, जो अपने घर गृहस्थी में ही ललायित हैं, उसी के प्रति लोभ को संजो कर रखे हैं और घर गृहस्थी का विशेषण दे रहे निरय वर्तमानी, जो नरक का रास्ता है तो उनको लाओ। तो इस श्लोक का आप विश्लेषण करें और बिल्कुल सरल तथ्य आ रहा है। यमराज जी अपने दूतों को कह रहे हैं कि जो भगवान के चरण कमल से विमुख हैं और अपने घर गृहस्थी में अति लोलुप हैं, उन व्यक्तियों को मेरे पास लाओ और अवसर पा करके भगवान के चरण कमल का एक परिचय दे रहे हैं कि वह निष्किंचनय परमहंस कुलय रसंगे जुष्टा, जो परमहंस है सत असत का विचार रखते हैं, देह आत्मा का विवेक रखते हैं, तो ऐसे भक्त अनवरत उसका सेवन करते हैं। या ये अजस्रम शब्द को ऐसा विमुखान के साथ भी जोड़ सकते हैं। यमराज जी के दूत कह रहे हैं कि अजस्रम विमुखान, जो भगवान के भक्ति से निरंतर दूर हैं, सदैव दूर हैं, उन व्यक्तियों को लाओ। कहने का आशय है कि यदि कोई कदाचित किसी भी स्थिति में कभी भी भगवान के उन्मुख हो गया तो उसका त्रिकाल में मंगल होता है, उस व्यक्ति को कभी यमराज के दूत नहीं ले जा सकते। हम लोग श्लोक को समक्ष रखे हैं तो ये अजस्रम शब्द है, इसको कई एक जगह जोड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण या सरस अंश लग रहा है तो भगवान के चरण कमल का परिचय दे रहे हैं, वह अंश भगवान के चरण कमल का एक परिचय दे रहे हैं कि निष्किंचनय परमहंस कुलय रसंग जुष्टात, जो अकिंचन भक्त हैं। अकिंचन भक्त का अर्थ है कि जिनको अहम मम नहीं है या कोई परिग्रह नहीं है या भगवान को छोड़ करके उनका कोई धन नहीं है, पूर्ण रूप से भगवान पर ही आश्रित हैं, तो ऐसे भक्त को अकिंचन कहा जाता है। भक्ति और भगवान के अतिरिक्त उन जिनके पास कुछ नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को अकिंचन कहा जाएगा। और परमहंस जो विवेकी पुरुष हैं, तो हंस के विषय में प्रसिद्धि है कि वह दूध और पानी को अलग कर देता है। दूध और पानी को अलग करने वाले पक्षी को हंस कहते हैं, लेकिन कुछ कुछ महापुरुष हैं जो भौतिक अभौतिक तत्वों का पार्थक्य कर लेते हैं, जड़ पदार्थ का त्याग करके केवल चिन्मय वस्तु का संग्रह करते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को परमहंस कहा जा रहा है। और ये लोग अजस्र जिष्टात, निरंतर भगवान के चरण कमल का आस्वादन करते, उसके मकरंद का पान करते रहते, मतलब भजन में सदैव संलग्न रहते। परमहंस भक्तों का विशेषण दे रहे हैं कि अजस्रम जिष्टात, वे निरंतर भगवान के भक्ति में संलग्न रहते हैं, भक्ति का त्याग नहीं करते। वे क्या कारण है? कारण रसज्ञ ही, या कहीं कहीं पाठ रसज्ञ ही है, कहीं असंग ही है, क्योंकि वे भक्ति के रस का स्वाद जानते हैं, उनको भजन का ऐसा रस मिल गया है कि उस रस में लुब्ध हो करके भगवान के भक्ति का कभी त्याग नहीं करते। ये भक्तों की विशेषता है, उनका स्वभाव है। और ध्यान दे, कह रहे हैं कि परमहंस कुल ही, एक दो भक्त की बात नहीं है, अनेकों भक्त हैं, भक्तों का समुदाय है जो निरंतर भगवान के चरण कमल की भक्ति में लगे हुए, कभी इससे विमुख नहीं होते, कभी इसका त्याग नहीं करते। इस विषय में हम एक श्लोक उद्धृत करना चाहते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्लोक भ्रमर गीत का है। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवतम का एक प्रसिद्ध गीत है। भ्रमर गीत इसको कहते हैं क्योंकि एक भौंरे को देह करके राधा रानी कुछ बोलना प्रारंभ कर दी। वे अपना शुद्ध बुद्ध खो करके और कुछ जल्प कर रही हैं, बाहर से लगेगा कि बिल्कुल व्यर्थ बातें हैं। एक भौंरा को देह करके और वे कृष्ण के विषय में कुछ कहना प्रारंभ कर दी, तो ऐसे वे बोल रही हैं कि जैसे भौंरे को संबोधित कर रही हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि भौंरे के माध्यम से वे कृष्ण और उद्धव को उलाहना दे रही हैं। और बहुत बहुत बातें बोली हैं, उस क्रम में राधा रानी को लग रहा है कि भंवरा हमारे चरण पर गिर करके अपने स्वामी के लिए कुछ प्रार्थना कर रहा है। राधा रानी कह रहे हैं कि ना, तुम चाटुकार रहे, हमारी चाटुकारता कर रहे हो, हमारे चरण पर गिर रहे हो, लेकिन अपने व्यवहार को बंद करो। मैं जानती हूँ कि तुम कृष्ण के दूत हो और उसके सिखाने से आकर के अन्य विनय कर रहे हो, लेकिन हमारा हृदय तो टूट चुका है। अब कृष्ण के प्रति हम विश्वास नहीं कर सकते, हमारा हृदय टूट चुका है। मैं जानता हूँ कि तुम अन्य विनय कर रहे हो कि फिर से कॉम्प्रोमाइज हो जाए, फिर से हम लोग मिल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और उसी क्रम में कह रहे हैं कि देखो, केवल एक जन्म का अनुभव नहीं है, अभी तो प्रत्यक्ष मैं अनुभव कर रही हूँ कि कृष्ण कितना कठोर है, लेकिन केवल एक जन्म की बात होती तो कुछ विचार किया जा सकता, वो स्वभाव से ही कठोर है। और हम लोगों को पौर्णमासी जी के कृपा से उसका हिस्ट्री पता चल गया। पौर्णमासी जी हम लोगों को बतलाई हैं कि केवल इसी जन्म में वो कठोर नहीं है, इसके पहले वो क्षत्रिय वंश में जन्म ग्रहण किया था। और कह रहे हैं कि विव्यधे कपिंद्रम, वे एक बंदर का वध कर दिया, लुब्ध धर्म। अच्छा, क्षत्रिय था तो उसको युद्ध में किसी को मारना चाहिए, यानी कि लुब्ध धर्म, एक बहेलिया जैसा छिप करके मारा। वो कितना कठोर है, कपटी है, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और वृक्ष के ओट में छिप करके मारा, बहेलिए जैसे मारा। या कोई कोई महानुभाव पाठ लिए हैं कि अलुब्ध धर्म। राधा रानी कह रही हैं कि अरे, बहेलिया कोई के शिकार करता है, किसी का वध करता है, तो उसको मांस का लोभ है, मांस खाता है, इसलिए किसी का वध कर देता है। लेकिन अलुब्ध धर्म, ये मांस खाने वाला नहीं है। पर मांस खाने वाला होता, किसी पशु की हत्या करता तो कुछ माना जा सकता है कि मांस के लिए कर दिया, लेकिन अलुब्ध धर्म, ये मांस खाने वाला नहीं। और बंदर का मांस कौन खाएगा? ये विव्यधे कपिंद्रम, बाली का वध किया क्योंकि बहुत कठोर है, बहुत कपटी है। और यही एक बात नहीं है, ये कह रही है कि स्त्रियम अकृत विरूपा, वह स्त्री काम याना, वो काम से मोहित हो करके उसके पास गए। क्षत्रिय है, अरे कोई स्त्री काम के विवश है, किसी क्षत्रिय के नजदीक जा रही है तो उसका धर्म है कि उसको अंगीकार करे, लेकिन उसके चरित्र पर थोड़ा विचार करो कि वह उस स्त्री को नहीं स्वीकार किया कामयाना, जो कि काम के विवश थी। और इतना ही नहीं, मान लीजिए को स्वीकार नहीं किया एक बात, वो इतना कठोर है, दुष्ट प्रकृति का है कि विरूपाम अकृत, उसका रूप बिगाड़ दिया। वो तो स्वीकार नहीं किया, इतना उसका हृदय खराब है, काला हृदय का है कि उस स्त्री को विरूप कर दिया कि दूसरे के पास भी मत जाओ, उसको दुखी करने के लिए उसका नाक कान काट दिया। अरे वे रिजेक्ट कर देता, वो स्त्री दूसरे से कनेक्शन जोड़ती, लेकिन अकृत विरूपा उसका नाक कान काट दिया कि इसे दूसरे से भी वो संभोग न कर सके, दूसरे का भी साथ न कर सके। और कोई कह सकता है कि भाई क्षत्रिय है लेकिन अब तो तापस है, जटा धारण किए हैं, विरक्त हैं कि ना स्त्री जीता। वह जटा धारण करने से या बलकल वस्त्र पहनने से स्त्री का त्याग नहीं कर दिया, वास्तविकता यह है कि उसके साथ जो स्त्री है उसका परतंत्र है, उसमें इतना आसक्त है कि उसके चलते इसका त्याग कर दिया। वो निसर्ग से कठोर है और कह रहे हैं कि केवल क्षत्रिय कुल में जन्म की बात नहीं है, एक बार वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। तो बलिम अत्वापि, बलि महाराज से उसका राज्य छीन करके और उसको अवेष्ट घेर लिया, बांध दिया, नहीं कि कौवा जैसा उसका व्यवहार। जैसे कौवा को आप भोजन दीजिए, कभी कभी देखा जाता है कि भोजन करने के बाद भी कौवे कई कौवा मिल करके और वे कपार पर सर पर प्रहार करने लगते हैं, कि एकदम कौवे जैसा उसका व्यवहार है। उसके इन सब व्यवहारों को देख करके हम तो कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया। अलम असित सख्य, कृष्ण के व्यवहार से हमें इतनी घृणा हो गई, इतना दुख हो रहा है कि हमें तो कोई भी काला चीज से कनेक्शन रखने की इच्छा नहीं हो रही है। एक तरह से राधा रानी कह रही हैं अपने सखियों को भी कि ठीक देखो, ठीक है तुम लोग सेवा करती हो, हमारा श्रृंगार करती हो, लेकिन सावधानी रखना कि कभी काजल मत हमारे सामने लाना, मैं काला से बहुत कठिनाई है। अलम असित सख्य, अब काला चीज कुछ हमको अच्छा नहीं लग रहा। भक्तों ने इसकी व्याख्या किया, राधा रानी कह रही है कि देखो कोयल है, ओ काला है हमको एकदम पसंद नहीं। अरे वो भी वृंदावन में है तो कहाँ जाएंगी। वो कह रहे हैं कि ठीक है वृंदावन में रहे, उनको भगा नहीं सकती हो तुम लोग, तो एक काम करो कि सारे कोयलों को पेंटिंग कर दो व्हाइट में। वे कई एक तरह से कह रही हैं कि हमें काला चीज एकदम पसंद नहीं है। ओ सखियां कह सकती हैं, भौरा एक कह सकता है कि तब काला की चर्चा क्यों कर रही हो, जब कोई काला पसंद नहीं है तो बात ही छोड़ दो। तो कह रही है दुस्त्यज तत्कथार्थ, कृष्ण कपटी है, कठोर है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि उसके कथा का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंश यही परम पुरुषार्थ है, तत्कथार्थ। और कह रहे हैं कि हमारी ही यह स्थिति नहीं है। अरे उसके कथा की यह विशेषता है कि जैसे वह दुख देने वाला है, हम लोगों को दुख दे रहा है, वैसे ही उसकी कथा भी बहुत लोगों को कष्ट देने वाली है, लेकिन फिर भी उसका मैं त्याग नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवन का वही लग रहा है। इसी क्रम में कह रही हैं कि यदनुचरित लीला पेयुष, यदनुचरित लीला कर्ण पेयुष विप्र, उसके कथा की यह विशेषता है कि यदनु चरित, उसका एक एक चरित्र, एक एक व्यवहार तो अमृत के समान है, कानों को बहुत सुखद लगता है, और उसका विप्रूट एक कणिका भी सकृत अदन एक बार कोई आश्वासित कर लिया तो द्वंद्व धर्मा विनष्टा। उसका परिणाम यह होता है कि ये जो मनुष्य की प्रवृत्ति है जोड़ी में रहने की, यह धर्म समाप्त हो जाता है। आप देखेंगे तो प्रायः प्रायः लोग जोड़ी में, स्त्री पुरुष का जोड़ी है, लेकिन कह रहे हैं कि एक बार उस अमृत का कोई आस्वादन कर लिया कान से तो द्वंद्व धर्मा विनष्टा, उसका द्वंद्व धर्म समाप्त हो जाता है, दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो जाता है। और सपदि गृह कुटुम्बम उत्सृज्य दीना, और सहसा तुरंत घर गृहस्थी का त्याग करता है, घर परिवार का त्याग कर देता है। दीना, त्याग करते समय उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उस पर भी ध्यान नहीं देता है, कौन भरण पोषण करेगा, उसकी पत्नी विलाप कर रही है, दुखी है, उस पर भी ध्यान नहीं देता है, सपद ही तुरंत त्याग कर देता है। अरे भाई वो क्या दीनम, वह खुद दीन है, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कहीं खाने का ठिकाना नहीं, लेकिन बह वह, एक की बात मैं नहीं कह रही हूँ, बह वह बहुत लोग ऐसे हुए कि यह इसी वृंदावन में बिहग चरजम चरंती, एकदम पक्षी का जीवन जीते। कहने का आशय यह है कि दीन दुखी परिवार का भी त्याग कर दे, वे कुछ सुखी नहीं है, भिक्षु चरजम चरंती, जैसे पक्षी हैं अलग अलग जगह से चारा चुगते रहते हैं, तो वैसे ही उसके कथा का यह प्रभाव है कि बह वह, एक दो नहीं अनेकों अनेक लोग ऐसे हुए कि इसी वृंदावन में भिक्षु चर्जाम चरंती, स्थूल भिक्षा नहीं ग्रहण करते, माधुकरी करके जीवन व्यतीत करते, एक रोटी एक घर से मांग लिए, एक रोटी दूसरे घर से मांग लिए, तो ऐसा उसके लीला कथा का प्रभाव है। लेकिन वे सब कुछ त्याग कर देते हैं लेकिन भक्ति का त्याग नहीं करते, उनके चरण कमल के आस्वादन का त्याग नहीं करते, यही भक्तों का लक्षण है। श्रीमद् भागवतम में कई एक जगह इन तथ्यों को रखा गया है। अब प्रथम स्कंद में पढ़ते हैं कि कतचिन मासा ससुश्च प्रिय कामया, भगवान जब हस्तिनापुर में थे तो वहाँ की स्त्रियाँ बहुत दुखी थी महाभारत युद्ध के पास, खास करके ससुश्च प्रिय कामया, दूसरे स्त्रियों पर भी ध्यान था, कुंती, गंधारी, द्रौपदी, लेकिन विशेष करके अपने बहन सुभद्रा के लिए, उसका प्रिय करने के लिए कतचिन मासा, कृष्ण कई एक महीने तक वहाँ रुक गए, लेकिन सबसे मिलजुल करके मंत्रणा करके अब कृष्ण जब द्वारका जाने के लिए तैयार हुए तो न सेहिरे, वहाँ के जो स्त्रियाँ हैं या पांडव लोग हैं, तो कृष्ण का विरह उनको सहन नहीं हो रहा। स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं कि तस्मिन् न्यस्त धियः तमनोद्रुत चेतसः, अब कृष्ण में ही उनका मन लगा हुआ, तन न्यस्त इक्षण, दृष्टि कृष्ण के पर है, लेकिन वे बहुत व्यथित हो रही हैं, विरह से बहुत व्यथित हो रही हैं। सुत गोस्वामी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि न रुदत उद्गलत वासम, उनके आँख से अश्रु निकल रहे हैं, लेकिन उससे अश्रुओं को, अश्रु बिंदु को आँख में ही न रुदत रोक रही हैं। क्यों रोक रही हैं कि देवकी के पुत्र निर्याति आगारण, हमारे घर से कृष्ण अब जा रहे हैं, तो अभद्रम न स्यात् इति बांधव स्त्रिय, तो उनका कोई अमंगल न हो इसलिए अश्रु को रोक रही है। ये प्रसिद्धि यह है कि जब कोई अपना बंधु घर से जा रहा है तो स्त्रियों का अश्रु देखना अमंगल माना जाता है। तो स्त्रियों के हृदय में इतना संताप है, विरह को नहीं सहन कर पा रही हैं कि उद्गलत वाष्पम, निरंतर अश्रु निकल रहे हैं लेकिन न रुधत, वे उसको रोकने का प्रयास कर रही, वास्तव में रोक नहीं पाई। उद्गलत, एक बार अश्रु निकला तो उसको आंख में रोक सकती है। ये शब्द पर विचार करें तो कंटिन्यूअस टेंस है उद्गलत, अब निरंतर निकल रहा है तो रोक तो नहीं पा रही है लेकिन अपने आंचल से छिपा रही है, पूछ रही है। तो इस प्रसंग में सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि बिल्कुल स्वाभाविक है, सत्संगान मुक्त दो संग हातुम नुत्सहते बुधा। अरे स्थिति यह है कि जिनके सत्संग के प्रभाव से दुसंग समाप्त हो गया है, सत्संगान मुक्त दुसंग हातुम नुत्सहते बुधा, जो विद्वान व्यक्ति हैं, सत्संग की महिमा को समझ गए, कृष्ण कथा की महिमा को समझ गए, तो कृत्य मानो जसो जस्मिन, यानी कि एक बार उसको सुन लिए तो अब उसका त्याग करने का उत्साह नहीं कर पाते। तो स्त्रियां या दूसरे पांडव तो कृष्ण के साथ रहे थे, मिले थे, तो वे विरह अनुभव कर रहे हैं, तो ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। हम यह कह रहे हैं कि कुरुकुल के स्त्रियों के विरह का वर्णन के क्रम में सूत गोस्वामी सिद्धांत दे रहे हैं कि भगवान के कथा का श्रवण करने के बाद व्यक्ति भक्तों के संग संगति का त्याग नहीं कर पाता है। कारण उसका यह है कि बुद्ध उसको पता है कि भक्तों के सत्संगति से ही ये कथा की प्राप्ति है। तो हम यह कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमल का परिचय दे रहे हैं कि जो निष्किंचन भक्त हैं तो वे निरंतर इसके मकरंद का आस्वादन करते हैं, भजन में लगे रहते हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि एक ग्रुप ऐसा है कि उससे विमुख है, अजस्रम निरंतर विमुख है। अरे एका दिन भी भगवान के चरण कमल के मकरंद का आस्वादन कर लिया तो उसकी बात नहीं कह रहे हैं। अजस्रम जो निरंतर विमुख है, तानम तान आनयध्वम, उस व्यक्ति को मेरे पास लाओ। अरे भाई वो भक्ति नहीं कर रहा है तो क्या गलती कर दिया कि उसको नरक में लाएंगे? ये तो इतना ही कर रहा है कि भक्ति नहीं कर रहा है। लेकिन सिद्धांत समझना चाहिए कि जो भजनीय है उसका भक्ति न करना अपने आप में गलती है। योगेश्वरों ने सिद्धांत दिया है कि आत्म प्रभो ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति, भगवान के भक्ति न करने का मतलब है भगवान का अपमान कर रहा। चूंकि हमको इंद्रियां हैं, प्राप्त है, तो इसका फल यही है कि उससे भगवान की सेवा किया जाए। ऋषभ देव कह रहे हैं मनोवचो दृक् करणे हितस्य साक्षात कृतम में परिवर्हणम ही, जो मन मनोवाणी या दूसरी भी इंद्रियां हैं तो इसके व्यवहार का एकमात्र फल यही है परिवर्हणम में हमारी पूजा किया जाए। लेकिन जब तक व्यक्ति पूजा नहीं करेगा, अपने इंद्रियों का विनियोग भक्ति में नहीं करेगा तो महामोह से मुक्त नहीं हो सकता। तो इसी बात को कह रहे हैं कि जुष्टा गृहे निरवर्तमनि ने गृहे निरवर्तमनि बद्ध तृष्णात्, जो व्यक्ति भगवान के चरण कमल के उन्मुख नहीं होता है तो उसकी स्थिति यह है कि बद्ध तृष्णा गृहे बद्ध तृष्णा, वो भोग में घर गृहस्थी में उसकी बहुत लालसा होती है और घर गृहस्थी में भोग में जो अतिशय लोलुप है तो उसे पाप होगा ही, उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। इसी से श्रीमद् भागवतम में गृहस्थी को निरय वर्तमनी, यहाँ भी आप शब्द सुन रहे हैं, सीधे गृहस्थी को निरय वर्तम कहा गया, ये नरक का रास्ता है। और जीव यदि भगवान के चरण का आस्वादन नहीं करेगा तो गृहस्थी के सुख के प्रति लुब्ध रहेगा, अजस्रम जो निरंतर, तो ऐसे व्यक्ति को लाओ, क्योंकि निरय वर्तमानी वो निरय के नरक के रास्ता में ही पड़ गया है। श्रीमद् भागवतम में गृहस्थी को अनेक जगह पर नरक का रास्ता कहा गया। समय नहीं है, कुरुक्षेत्र में जब राजा लोग जुटे और कृष्ण के दर्शन के लिए गए तो जादुओं के भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अहो भोजपते जूयम जन्म भाजो निर्णाम भी, ये जो जादव हैं वास्तव में जन्म लेना इनका ही सार्थक है। वे क्यों ऐसा कह रहे हैं, अगर यत पश्चात सकृत कृष्णम दुर्दर्शम अपि जोगिनम, क्योंकि निरंतर कृष्ण का दर्शन कर रहा है। जादुओं के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि इनका कितना भाग्य है कि इनको साथ चलने को मिलता है, उनसे संबंध है, उनके साथ सोते हैं। अरे और तो और निरय वर्तमनि वर्तता, ये गृहस्थी में कोई सन्यासी नहीं है, स्वयमा विरासित, और भगवान खुद ही आ गए। तो राजा लोग जादुओं को लक्ष्य करके कह रहे हैं कि निरय वर्तमनि वर्तता में गृहस्थी में है। अरे भाई जादव हैं, उनके गृहस्थी को कैसे निरय वर्तम कहेंगे। तो सरस्वती जी रक्षा कर रही हैं कि निरय वर्तम निवर्त था, यदि निरय वर्तमनि नी को इधर से काट करके वर्तताम के साथ जोड़ देंगे तो निरय वर्तम जो नरक का रास्ता है, निवर्तताम जो निवर्तित करने वाले। अरे जादुओं का स्मरण करने से, उनका उच्चारण करने से सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं, उनको कैसे नरक का रास्ता कहा जाएगा। जो हो यथाश्रुत अर्थ लेंगे तो आशय यही है कि गृहस्थी को नरक का रास्ता कह रहे हैं और भक्तों को सेवा वैकुंठ वर्तमसु। विदुर जी कह रहे हैं कि हमारे जो संशय है उसको भी दूर कर दूंगा भक्तों की सेवा करके। कह रहे हैं दुरापा हल्प तपस सेवा वैकुंठ वर्तमसु, तो भक्तों की सेवा है तो यह दुरापा इसको प्राप्त करना कठिन है, लेकिन भक्तों के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वैकुंठ वर्त, गृहस्थी को निरय वर्त नरक का रास्ता, भक्तों को वैकुंठ का रास्ता। और भक्तों का लक्षण दे रहे हैं यत्रोपगीयते देव देव जनार्दन, भक्तों का यही लक्षण है कि भक्तों के समुदाय में निरंतर जनार्दन के कीर्ति का गान होता है। और इस प्रकार जमराज जी अपने दूतों को कह रहे हैं कि देखो भाई, जो अजस्र निरंतर भगवान के चरण कमल से विमुख है उस व्यक्ति को हमारे पास लाओ, जो भोग में बहुत आबद्ध है, जिसकी तृष्णा बहुत प्रबल है भोग में, उस व्यक्ति के लाओ। अब अजस्र विमुख का क्या अर्थ हुआ, इन सब बातों को आगे के श्लोक में बतलाए हैं, जिसको हम लोग सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण।